الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا
فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے
कौन बताएगा वो नील उठा और कहाँ इस्तेमाल हुआ है। लगते के राम कुरान के फरिश्तों के वास्ते मैं बोर्ड का इम्तिहान लेना भी शुरू कर दूँ। याद आ गया, अभी नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन से पारे में है, कौन से रुकू में है, इतना गहराई से भी ध्यान नहीं देना। तो किराम ये अल्लाह ताला के फरिश्तों की एक मुबारक जमात का वस्फ, उनकी सिफत अल्लाह ने कुरान में बयान वाला मुबारक लफ्ज हुफाज के साथ लगता है। हुफाज़े किराम यानी ये हाफिज जो बड़े इज्जत वाले हैं, बड़े बुजुर्गी वाले हैं, बड़े करामत वाले हैं। इसीलिए एक बात ये याद रखो कि ये हाफिज लकब तो हकीकत में अल्लाह ताला का लकब है। कुरान में अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। ये हाफिज अल्लाह का लक़ब है कि अल्लाह कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन कुरान के हाफिज इंसान कितने खुशनसीब है कि अल्लाह ने अपना मुबारक लकब हमको अता फरमा दिया है, जो असल अल्लाह ताला का लकब है, खुदा ताला की सिफत है, वो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई कि हाफिज साहब। ये कितना बड़ा एहसास हो गया है। कोई बादशाह किसी को यूं कहे कि चलो मैं आज एक दिन के लिए अपनी हुकूमत आपको देता हूँ, एक घंटे के लिए अपनी हुकूमत आपको देता हूँ, तो आदमी कितना खुश हो जाता है। तो ये तो अल्लाह ताला ने अपना एक मुबारक लकब, अपनी एक मुबारक सिफत हाफिज, हिफ्ज़े कुरान की बरकत से दुनिया में हाफिजों को अता फरमाई, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और हाफिजों के दर्जे तो कयामत के दिन कम से कम 6666 नंबर पर हुफाज़े किराम जन्नत में रहेंगे इंशाअल्लाह। भाई कोई बड़ा ऊंचा अपार्टमेंट है, 15 मंजिल का, 20 मंजिल का, जितने ऊंचाई पर वो फ्लैट लेंगे तो इतनी हवा साफ सुथरी मिलेगी और वहां से शहर का पूरा मंजर बड़ा हसीन और प्यारा मालूम होता है। तो अगर किसी को 6666 नंबर की ऊंचाई पर अगर फ्लैट मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो कितना खुश नसीब होगा अंदाज़ा। हाफिज़े कुरान के लिए हदीस में आता है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन फरमाएंगे, इक़्रा पढ़ो कुरान की आयत को, वरतकी जन्नत के दर्जात के ऊपर चढ़ो, तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी जहां जाकर के कुरान मजीद की तुम्हारी तिलावत मुकम्मल हो जाएगी। और कुरान में एक गिनती के अतबार से 6666 आयतें करीमा हैं। तो गोया कि जन्नत के अंदर इतनी ऊंचाई के ऊपर, कम से कम इतनी ऊंचाई पर अल्लाह ताला हाफिजों को मकान अता फरमाएंगे, कितनी बड़ी बात हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस मुबारक नस्बत से जोड़ के रखा ही अल्लाह ताला का करम और फज़्ल का मामला है। और देखिए اصل قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ ذریعے کے طور پر استعمال کر لے گے وہ بھی بڑا خوش نصیب کہلاتا ہے. یہ سب ذریعے ہیں جن کی خدمت میں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں. آپ سب کے سینے، آپ کے دل، آپ کے قلب، آپ کے دماغ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اس دنیا میں قرآن کی حفاظت کے واسطے. اور جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذریعہ بنا لے گئے وہ بھی جو ہے بڑا خوش نصیب ہے. اسی لیے ہم خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ہمارے سینوں کو قبول کرنا لیا. اب ایک حدیث میں آپ کو بخاری شریف کی سنا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ سناتے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خواب سن کر کے ان کو صحیح تعبیر دیتے تھے، یہ خواب جو دیکھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. مجلس سے حضور سوال کروائے، اگر کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا تو حضور اپنا خواب بیان کروائے کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا اور یہ اس کی تعبیر ہے. تو ایک روز معمول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کروایا، پر نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. لمبا خواب حضور نے سنایا، بہت لمبا، جس میں عجیب عجیب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، وہ بتلائی ہوئی ہیں. اس میں ایک بات میں آپ کو بیچ میں سے سناؤں کہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس دو شخص آئے، یعنی ایک حضرت جبرائیل تھے اور دوسرے حضرت میکائیل تھے، دونوں اللہ کے بہت بڑے فرشتے ہیں. کہو آئے میرے پاس اور مجھے اٹھایا ان دونوں نے، اور اٹھا کر کے وہ دونوں مجھے لے کر کے چلے. بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے دکھائی، دکھاتے دکھاتے ایک جگہ پر لے گئے کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا انسان اس کے پڑوس کے اندر ایک بڑا بھاری پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا پتھر لے کر کے. وہ کھڑا ہوا انسان پتھر لے کر کے وہ سوئے ہوئے انسان کے سر پر زور سے مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کا سر کچل دیا جاتا ہے، خون نکلتا ہے، سر کے چورے چورے ہو جاتے ہیں. آج ہم کو ایک چھوٹا پتھر لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی بڑا پتھر چٹان اٹھا کر کے منہ پہ مار دے، سر پہ مار دے، پورا سر چورے چورا ہو جائے، منہ چورے چورا ہو جائے، کتنی ہم سے تکلیف ہوتی ہوگی. ایک انسان لیٹا ہوا ہے، دوسرا انسان کھڑا ہے اور بڑی چٹان اور بڑا پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ پورے زور سے اس کے منہ اور سر پہ مارتا ہے اور اس کے منہ اور سر کے چورے چورے کر دیتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے. تو وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، जितनी देर में वो पत्थर लेकर आता है इतनी देर में उसका मुंह और सर कुदरती तौर पर अच्छा हो जाता है, फिर आकर के जोर से मारता है उसको और पूरा सर कुचल देता है और पत्थर दूर जाके गिरता है। मुसलसल ये अमल हो रहा है, चोट मारी जा रही है, तकलीफ होती है, चूरे चूरा सर और खोपड़ी हो जाती है, चेहरा चूरे चूरा हो जाता है, पत्थर दूर जाके गिरता है, जितनी देर में वो पत्थर लेके आता है इतनी देर में सर फिर अच्छा हो जाता है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत नर्म था। जब ये मंजर देखा तो आपने पूछा जिब्रील और मीकाईल को ये क्या हो रहा है, किस गुनाह की सजा हो रही है? तो जिब्रील मीकाईल ने कहा अभी आगे चले, अभी और आगे चले और भी बहुत सारी अजाइबात दिखलाए। जब पूरा सफर तय कर लिया, सफर मुकम्मल हो गया और जिब्रील और मीकाईल वापिस जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज बतलाया। तो राज बताते हुए ये बात इरशाद फरमाई, ये हदीस इसलिए सुना रहा हूं ताकि हम इस अजाब से बच जाए। जिब्रील और मीकाईल ने ये बतलाया कि ये आदमी जो जमीन पर सोया हुआ है ये वो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में कुरान की दौलत अता फरमाई थी, कुरान की नेमत अता फरमाई, यानी उसको हाफिज कुरान अल्लाह ने बनाया। हाफिज का हो, कुरान का इल्म रखता था, कुरान अच्छी तरह पढ़ना जानता था, लेकिन कुरान की नेमत मिलने के बाद उस इंसान ने ऐसी गफलत की कि फर्ज नमाज तक को वो छोड़ देता था, सो जाता था गफलत करके, फर्ज नमाज को छोड़ देता था। का ऐसे कुरान वालों को इंतकाल के बाद बरजख की जिंदगी में ये अजाब हो रहा है कि उनके सर के ऊपर पत्थर मार के सर को कुचल दिया जाता है। इसीलिए नियत कर लो कि अल्लाह ने हमको कुरान की नेमत अता फरमाई है, कभी हम फर्ज नमाज नहीं छोड़ेंगे। तरावी हो जाती है तो ये समझते हैं कि आज की जिम्मेदारी खत्म हो गई और फिर शानदार दस्तरखान लगेगा और दस्तरखान के बाद शहर में चक्कर लगाने के लिए निकलेंगे तफरी में। आधी पौनी रात गुजर जाती है, बाद मरतबा आधी पौनी रात के बाद सो जाएंगे, फजर की नमाज कजा हो जाएगी रमजान की, बाद मरतबा जोहर की नमाज कजा हो जाती है, अलग से पढ़ते। ये बहुत बुरी और खतरनाक चीज है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। मैंने इसी मकसद से यह हदीस सुनाई कि अर्ज़ मत कर लो कि रमजान हो कि रमजान न हो, कभी भी जो है हमारी फर्ज नमाज छूटने न पावे। कहो इंशाअल्लाह फर्ज नमाज पूरी पाबंदी के साथ अदा करेंगे। और हम तो बहुत खुश नसीब है, अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी फजीलत रखी कि जो आदमी जो शख्स खड़े होकर नमाज में कुरान पढ़ता है तो हर हर्फ पर अल्लाह ताला उसको 100 नेकियां अता फरमा दे, 100 नेकी। आप में से किसी को मालूम है बिस्मिल्लाह आगे कितना हरूफ है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में 19 हरूफ है, 10 और 9 19 हरूफ। जो शख्स नमाज में खड़े होकर सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े अल्लाह उसको 1900 नेकियां अता फरमा दे, 1900 नेकियां। तो फिर अगर नमाज में कुरान पढ़ेंगे, लंबी लंबी सूरतें पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा, कितनी ज्यादा नेकी मिलेगी, कितना बड़ा अजर मिलेगा। और नवाफिल में कुरान पढ़ने की आदत बनाओ, सुन्नतों में नवाफिल में कुरान पढ़ने की आदत बनाओ, इसकी वजह से अल्लाह ताला कुरान को इंशाअल्लाह मजबूत कर देंगे नवाफिल में पढ़ने की बरकत से। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम थे। 50 साल दारुल देवबंद के मोहतमे में रहे हो, उनके हिफ्ज का किस्सा बड़ा अजीब है कि जब वो हाफिज बने तो उनके वालिद साहब ने पूरे देवबंद की दावत की खुशी के अंदर कि मेरा बेटा हाफिज बन गया है, शानदार दावत की। हाफिज मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के अब्बाजान, सब लोग दावत खा करके चले गए तो हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं बहुत छोटा था, अब्बाजान ने मुझे नहीं बुलाया और करीब बिठा करके मुझे दुआ दी, दुआ देकर के कहा बेटा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तुमको ऐसा इल्म दे कि पूरा आलम उससे चमक नूर हासिल करे, आलम को आपके इल्म से फायदा पहुंचे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और पूरी दुनिया में हजरत का इल्म और नूरानियत पहुंची पहुंच रही है। फिर आगे फरमाया कि बेटा लेकिन मैंने तुमको हाफिज अपने लिए बनाया है, हाफिज अपने लिए बनाया, मैं तुमको ताकीद करता हूं कि रोजाना कम से कम एक पारे की तिलावत करके मुझे इशारे सवाब करना। तो देखने वाले जानते हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के अहतमाम की मशगूलियत, जब हमारे इलाके में सालाना जलसों में तशरीफ लाते थे उस सफर की मशगूलियत, ऐसा भी सफर हो दारुल उलूम के कहते भी काम हो मगरिब के बाद अवामीन के अंदर एक पारा पढ़ने का पूरा साल पूरी जिंदगी हजरत का मामूल रहा, पूरा साल पूरी जिंदगी मगरिब में अवामीन में एक पारा मुकम्मल इत्मीनान से तिलावत फरमाते थे। ये नवाफिल की तिलावत ये कुरान को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया है, इससे कुरान बहुत उम्दा मजबूत हो जाता है। और देखिए असल तो याद करवाना अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, कुरान में फरमाया सनुकरिहु का फला तंसा, सनुकरिहु का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोहरा मशक्कत का सामना करना पड़ा, दोहरी तकलीफ उठानी पड़ी। अल्लाह ताला ने उस मौके के ऊपर ही आयत नाज़िल फरमा करके आपको तसल्ली दी कि आपके सीने के अंदर कुरान तो हम जमाए, इसीलिए आप हजरात जो है दुआओं का भी अहतमाम कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सीने में हमारे दिल दिमाग में कुरान को मजबूती से जमा दे, दुआ का भी एहतमाम करना। तो जिस तरह नवाफिल की तिलावत ये जहन में कुरान के मजबूत होने का जरिया है, इस तरीके से दुआओं का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम करना है कि अल्लाह उसकी बरकत से कुरान को जहन के अंदर महफूज कर। मेरे पीर व मुर्शिद हजरत अब्दुल मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह कई मरतबा हजरत की जुबान से ये बात सुनी कि उस जमाने के अंदर जुमा के दिन देवबंद से गंगो अपने वतन हजरत तशरीफ ले जाते, सवारियां नहीं थी, बसें भी नहीं थी उस जमाने में, पूछा हजरत कितनी देर लगती थी आपको देवबंद से गंगोह तक पैदल तशरीफ लाने में, चल के तशरीफ ले जाने में? फरमाया कि ये तुम्हारे घड़ी घंटे हमारे पास उस जमाने में थे कहाँ कि हम हिसाब लगाए कि 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, घड़ियां थी ही हमारे पास। काफिर का फज्र की नमाज देवबंद पढ़ करके मैं गंगोह के लिए चलता था तो देवबंद से मैं कुरान मजीद की तिलावत शुरू करता था तो गंगोह पहुंचते हुए कभी 23वां पारा होता, कभी 24वां पारा होता, इतने में मैं गंगोह पहुंच जाता। कसरत से तिलावत, खूब तिलावत। अरबी में जुमला मशहूर है, इज़ा तकर्रर अल लिसान तकर्रर फिल क़ल्ब। एक छोटे काम से दूसरा बड़े काम से, जब कोई चीज जुबान पर बार बार आती तो उसको दिल के अंदर जमना आसान हो जाता है। जब कसरत से तिलावत करेंगे, खूब तिलावत करेंगे, तो उसकी बरकत से कुरान दिल के अंदर महफूज हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और मामूल था कि रोजाना मुकम्मल एक कुरान मजीद की तिलावत हो जाती थी जबानी। मजलिस का वक्त होता, फिर हजरत फरमाते लेट जाना। तो लोग समझते कि बुढ़ापा है, थकन है, तो चादर तान करके हजरत जो है लेट जाते, लेकिन करीब बैठ करके सुनाई देता था कि चादर ओढ़ करके हजरत की तिलावत जारी होती थी। लोग ये समझ रहे लेट गए, लेकिन तिलावत जारी होती और रोजाना पूरी पाबंदी से एक मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत करवा लिया करते थे। और उससे आगे की एक अजीब बात अभी किताब में पढ़ी, हजरत मौलाना मोहम्मद आसफ प्रताप गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अशआर जो अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में है वो नए सिरे से शानदार छप के आए हैं। उसके मुकदमे के अंदर उनके कुछ हालात लिखे हुए हैं, तो उनके शेख थे हजरत मौलाना फजल अली नशरंदी रहमतुल्लाह अलैह। अजीब उनके हालात लिखे कि हजरत को मुकम्मल कुरान मजीद तो जुबानी याद नहीं था, हाफिज थे, लेकिन बुखारी शरीफ के भी हजरत हाफिज थे। और का मामूल था रोजाना पूरे साल एक कुरान की मुकम्मल तिलावत फरमा दे और एक बुखारी शरीफ की मुकम्मल तिलावत फरमा दे, रोजाना का ये मामूल था। पूरा कुरान तिलावत करना और पूरी बुखारी शरीफ की तिलावत मुकम्मल करना। जब कसरत से तिलावत होगी तो दो बरकतें सामने आएगी, एक अल्लाह ताला वक्त में बरकत का मौजूदा में करामत भी अदा फरमाएंगे, करामत देंगे कि आप कम वक्त में बहुत ज्यादा तिलावत कर लेंगे, ये कसरत से तिलावत की बरकत से हासिल हो जाए। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की करामत कई किताबों में लिखी हुई है, मशहूर है कि असर और मगरिब के दरमियान में पूरे कुरान की तिलावत कर लिया करते थे, असर और मगरिब के दरमियान में। तो दिल्ली में कई लोगों ने इश्काल किया कि हजरत ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कई रोज मजलिस रखो, एक प्रोग्राम रखा बाकायदा। और दिल्ली के लोग बहुत बड़ी तादाद में शामिल हुए, बहुत बड़ी तादाद में मजमा आया, जमुना नदी के किनारे पर प्रोग्राम हुआ। असर की नमाज के बाद सूरह फातिहा से तिलावत करना शुरू किया, गुरूब से पहले पहले सूरह नास तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। बड़े मजमे ने अपने कान से सुना, मुशाहदा किया। तो कसरत से तिलावत, उसकी बरकत से जहां हिफ्ज मजबूत होता है वहीं पर अल्लाह ताला कम वक्त के अंदर ज्यादा तिलावत की बरकत भी अदा करता है। और देखिए आज कसरत से हमारे उपाधि इराम को एक शिकायत रहती है, याद नहीं होता। तो हम तो ये करते हैं कि ईद के बाद जो है कुरान बंद करते हैं, तो रजब शाबान के अंदर उसको खोलते हैं। पूरे साल मस्जिद के अंदर घर में बहुत हिफाजत से लिहाफ में लकड़ी का जो रखा हुआ रहता है पूरा साल, उसकी तिलावत का, उसको याद करने का, उसके दौर का, उसको नवाफिल से पढ़ने का, चलते फिरते पढ़ने का मामूल बनाइए, तो फिर रजब शाबान के अंदर जो टेंशन उलझन हो अल्लाह ताला उसको खत्म करवा देंगे। और एक बड़ी बात दूसरी बतलाओ, आप बुरा ना माने, मशहूर बात है, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद इमाम वकील से शिकायत की याद न रहने की। इमाम वकील का मजार खुराफा के अंदर जहां पर है, मिस्र में, उस मजार के ऊपर दरवाजे पर यही अशार लिखे हुए हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मजार चंद कदमों पर है, इमाम रोटी का मजार यहाँ पर है, चंद कदमों के फासले पर लिखा हुआ है, शकौतु इला रब्बी लिसूई हिफ्ज़ी फअवसानी इला रब्बिल मआसी, कि मैंने अपने उस्ताद से शिकायत की कि हजरत मुझे याद नहीं रहता, हाफ़िज़ा कमजोर हो गया, तो इरशाद फरमाया बेटा गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, फ़ाइनल इल्म नूरुन मिन इलाही, और कुरान तो असल नूर का मखज़न है, मंबा है, असल मंबा इल्म का कुरान है, फ़ाइनल इल्म नूरुन मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी, ये तो अल्लाह का नूर है और गुनहगारों को अल्लाह ताला ये नूर नहीं अता फरमाएगा। आप बुरा न माने, आज हमारे उस्ताद-ए किराम जिन आंखों से कुरान पढ़ते हैं उन्हीं आंखों से मोबाइल पर न देखने की चीजें भी देखते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें फिल्में वो भी देखते हैं। जरा सी देर के लिए अपने अंदर एहसास पैदा करो, जिन आंखों से हम अल्लाह का कलाम पढ़े, अल्लाह का कुरान पढ़े, उन आंखों से हम हराम चीजों को देखें। एक ही बर्तन के अंदर दूध और पेशाब थोड़ा ठीक रह सकता है, और इन्हीं कानों के जरिए से जिससे कुरान सुनेंगे, उन कानों के जरिए से गानों की आवाजें सुनेंगे, फिल्मों की आवाजें सुनेंगे, गलत चीजों को सुनेंगे, तो उसकी नहूसत ये होगी कि हाफ़िज़े के ऊपर उसका असर होगा। और फिर बात जैसी चाहिए ऐसी आती रहेगी, इसीलिए रो रो करके सलातुल तौबा पढ़ के अल्लाह से माफी मांगो कि जो गलत चीजें आंख से देखी, जो गलत चीजें कान से सुनी, अल्लाह से तौबा करो, और तौबा करने के साथ साथ फिर मजबूती से याद करो, दौर करो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान को अल्लाह ताला दिल में जमा देंगे। ये गुनाह बड़ी खतरनाक चीज है, और जैसे मैंने आपको नमाज वाली हदीस सुनाई कि कुरान मिलने के बाद नमाज में गफलत करे तो उसके लिए कैसी खतरनाक सजा हदीस के बाद में आई, उससे भी आगे के ऐसे ऐसे गुनाह वजूद में आते हैं कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला कुरान मजीद की बरकत छीन लेते हैं। इसलिए इसकी तरफ बहुत खास तवज्जो, बहुत खास ध्यान होना चाहिए कि हम जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई तो हम अपने बदन के आधा ही गुनाहों से हिफाजत करें, आंख से गलत चीज न देखे, कान से गलत चीज न सुने, सबसे बड़ी बात जुबान, जिस जुबान से हम तरावीह में कुरान सुनाएंगे, जिस जबान से दौर याद करेंगे, उस जबान से हम गलत चीज न बोले, ये आलात है कुरान के, जिसके जरिए से कुरान सीने में आएगा, महफूज होगा। इन आलात को अगर गंदा करेंगे तो फिर हिफ्ज के अंदर पुख्तगी और मजबूती नहीं आ सकती। खूब गुनाहों के ऊपर तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो और अपने आप को गुनाहों से बचाओ। बास मरतबा हुफ़ाज़े किराम की ऐसी ऐसी शिकायतें रमज़ान में आती है कि शर्म के मारे हमारा सर झुक जाता है। मैंने कहा कि आज की तरावी हो चुकी तो समझे कि अब तो हमारा बोझ खत्म हो गया, अब सुबह में नींद से उठने के बाद कल की तरावी का टेंशन दिमाग में रहेंगे। वहां तक पूरी रात शहर में आवारागर्दी, घूमना फिरना, खाने पीने की महफिलें, मजलिसें, उसमें वक्त जाया करना नहीं। ये रमजान की मुबारक रातें ये तो अल्लाह ने कुरान की तिलावत और दुआओं के लिए अदा करवाई, और कुरान की आयत में इशारा करना है ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إن قرآن الفجر كان مشهودا। इन दोनों में से किसी एक आयत की तफसीर में किसी मुफस्सिर ने बड़ी पते की बात लिखी है कि रात के आखिरी हिस्से में जो तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसको कुरान की बरकतों से मालामाल करेगा, उसका कुरान का हिफ्ज भी मजबूत होगा और कुरान के उलूम के चश्मे भी अल्लाह ताला उसके ऊपर खोलेंगे। रात के आखिरी हिस्से की तिलावत, इसीलिए रमजान के मुबारक महीने में तरावी से फारिग होने के बाद कुछ खा लो, पी लो, थोड़ा सा आराम कर लो, आधी रात होने अब खड़े हो जाओ, नवाफिल में दो दो की जमात बना करके सुनाओ, दौड़ याद करो। रमजान की रातों में खास तौर पर खास निस्फ आधी रात गुजरने के बाद सहरी तक पूरे इन्हिमाम और पूरी मेहनत के साथ कुरान मजीद का दौर करो, मजबूती से याद करो, नवाफिल में सुनाओ, उसकी बरकत से अल्लाह ताला कुरान को जहन में महफूज भी कर देंगे और कुरान के उलूम के चश्मे खोलेंगे। अल्लाह और देखिए आप तरावी को इमामत से कुछ हल्का समझते हो, आम तौर पर एक सोच है उपाधि कि भाई फर्ज नमाजों की इमामत और तरावी की इमामत दोनों में कुछ फर्क समझते हैं लोग, ऐसा नहीं है। मुसल्ला मुसल्ला है, इमामत इमामत है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। हर हाफिज कुरान जो तरावी सुनाए वो नमाज के और तहारत के बुनियादी मसाइल को भी अच्छी तरह जानते हैं, किन चीजों से नमाज फासिल होती है, किन चीजों की वजह से नमाज में गड़बड़ी पैदा होती है। बहुत सुखो मसाइल का इल्म नहीं, हाफिज हुए, वालिद साहब की चाहत है कि मस्जिद में मेरा बेटा तरावी पढ़ा है और मस्जिद वालों से मेरा ताल्लुक है, ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर उनको मुसल्ले पर खड़ा करवा देते हैं। बिचारे को नमाज के फराइज मालूम नहीं, वाजिबात मालूम नहीं, नमाज तोड़ने वाली चीजों का इल्म नहीं और वो तरावी सुना रहा है। सिर्फ कुरान नहीं, कुरान और सही तरावी की नमाज ये दोनों चीजें मकसूद है, दोनों की अहमियत है। इसीलिए आप लोग मसाइल को भी अच्छी तरह सीख लें, अपने अपने उस्ताद साहब की खिदमत में बैठ करके या किसी आलिम के पास जाकर के, अभी दो चार रोज बाकी है, नमाज के बुनियादी मसाइल सीख लीजिए, फराइज वाजिबात जिन चीजों की वजह से नमाज फासिल हो जाती है, नमाज टूट जाती है, उसका इल्म भी बहुत जरूरी है। और उससे पहले तहारत के मसाइल, तहारत के मसाइल से भी बड़ी गफलत। हमारी यहां किताबों के अंदर जहां मसले मसाइल पढ़ाते हैं वहां इस्तिबरा के मसाइल लिखे हुए हैं कि पेशाब करने के बाद थोड़ी देर इत्मीनान से खांसी कर ले, कुछ हरकत कर ले ताकि पेशाब का कोई खतरा हो तो वो निकल जाए। अब आज माहौल क्या बन रहा है, जल्दी जल्दी आए, पेशाब किया और फौरन उठ करके आ गए, वजू किया और मुसल्ले पे आके खड़े हो गए।
اپنی نماز بھی خراب ہوئی اور پوری جماعت کی نماز خراب کر دی. سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. طہارت کے مسائل کی طرف بھی توجہ دو, دھیان دو, یہ بھی بہت اہم ہے. اس لیے تمام حفاظ کرام جو بھی تراویح پڑھائیں گے, نوافل میں قرآن سنائیں گے, ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ بہت اہم ہے کہ وہ نماز اور طہارت کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لے کے جانتے ہیں. اور دیکھیے ایک بہت غلط ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جو حافظ کم وقت میں تراویح پڑھا لے لے اس کے پیچھے لوگوں کی بھیڑ اور مجمع زیادہ ہو رہا ہے. بعض لوگ تو پہلے دو تین روز تک پورے شہر کی مسجدوں کو, اطراف کی مسجدوں کے اندر کتنے بجے تراویح شروع ہوئی, کب ختم ہوئی, اسی کی رپورٹیں لیتے ہیں. پھر پتا چلا فلاں جگہ حافظ صاحب اتنی جلدی فارغ کروا دیتے, لوگ ادھر جانا شروع کر دیتے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن سنانا ہے خدا کی رضا کے خاطر, اور اللہ کا حکم ہے قرآن کے لیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن صحیح پڑھنا یہ فرض ہے, ضروری ہے قرآن صحیح پڑھنا. آپ کو پیچھے مسلمیوں کی رعایت نہیں کرنی کہ وہ لوگ چاہے کہ آپ کو جلدی 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 مختصر وقت میں قرآن ہو جائے, نہیں, پورے حروف صحیح, مخارج کی ادائیگی اور تجوید کے جو اہم ضروری قواعد ہیں اس کی رعایت کے ساتھ قرآن سنانا ہے. کہو انشاءاللہ. ہمیں جلد بازی محسوس نہیں کہ اس کے اندر لہنے دری ہو, لہنے خفی ہو. بہت سی مرتبہ تو قرآن پڑھنے میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ معنی فاسد ہو جاتا ہے, سختی کی رعایت نہیں ہوتی, اور بڑی بڑی غلطیوں کی وجہ سے اس قرآن کا حال کیا ہوتا ہے جو حدیث میں آیا, رُبَّ قرآن والقرآن یلعن. بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ کہ قرآن اس کے لیے لعنت کرتا ہے, بس دعا کرتا ہے قرآن اس کے لیے. ہمیں سے نہ بچے, ہمیں تو قرآن کے ذریعے اجر حاصل کرنا ہے, ثواب حاصل کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. پورے اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے صحیح قرآن آپ کو پڑھنا ہے. اور بہت سی جگہوں کے اوپر قرآن کے اوپر باقاعدہ بحثوں کی لین دین بھی ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے قرآن کی کمزوری کا ایک سبب ہے کہ باقاعدہ پہلے سے اس کی لالچ ہمارے دلوں میں رہتی ہے کہ بھائی اتنا بڑا لفافہ ہم کو 27 یا 29 کو ملنے والا ہے. یا بعض لوگ تو پہلے سے کہ بھائی کہاں کتنے ملیں گے. تراویح کے پڑھانے کے اوپر اجرت اور پیسے بھلے لوگ اس کو آپ کو ہدیے کا عنوان دے, ہدیہ دینا ہے تو پہلی تاریخ کو ہدیہ دے, پہلے جان کو ہدیہ دے. حضرت مفتی اسماعیل صاحب کشولوی دامت سرکار کا حکومت آ گیا جس زمانے میں ہمارے یہاں ڈابھیل میں تھے, تو مدرسے کے دو طالب علموں کو اپنے وطن کشولی میں حفظ کے لیے حضرت نے بھیجا. اب دونوں اس وقت مدرس بن چکے ہیں, بہترین قرآن کے قاری, اس وقت وہ پڑھتے تھے. تو ان دونوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ہم جب 29 شعبان کو پہنچے تو اس دن حضرت مفتی صاحب نے اس زمانے کے اعتبار سے ایک رقم ہم دونوں کی جیب میں رکھ دی کہ تو رمضان کے خرچے میں کام آئے گی. یہ ہدیہ دے رہا ہے. اب یہ تو بات آئی تھا آپ کو 27 یا 29 کو اعزاز کے ساتھ حافظ صاحب کی خدمت کے اندر پھول ہار کے ساتھ لفافہ پیش ہو رہا ہے, تھیلی پیش ہو رہی ہے, اس کی طرف نظر نہیں، ہماری نظر اللہ کی رضا کی طرف، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھائے، اس کے اوپر پیسوں کی ہم امید اور آرزو نہ رکھے، اللہ کے لیے قرآن پڑھاؤ، اللہ تعالی ہماری ضروریات کو انشاءاللہ اپنے ایسے پورا کر دیں گے۔
سب اپنی برادری کے لوگ بیٹھے، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ہماری آج کل مدرسوں کے اندر موبائل کے مسائل بڑے ٹیڑھے ہو رہے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کبھی کچھ دن پہلے اس علاقے کے کئی مدرسوں کے ذمہ داران حضرات جمع ہوئے تھے موبائل کے مسائل کے سلسلے میں، تو سوال آیا ایک بہت بڑا کہ ان کے پاس 50-50, 40-40 ہزار روپے کے موبائل آتے کہاں سے؟ اس میں سے بہت سے طلبا تو وہ ہیں جو مدرسے میں زکات سے پڑھتے ہیں، مستحق میں اپنا نام لکھواتے ہیں، فیس نہیں ادا کرتے مدرسے میں اور پڑھتے ہیں، پھر اتنے مہنگے مہنگے موبائل، ابھی پکڑا گیا چند دن میں دوسرا لائے، پھر پکڑا گیا چند دن میں تیسرا لائے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ موبائل لاتے کہاں سے؟ تو کئی حفاظ کرام نے جو ابھی عربی کتابوں میں ہے انہوں نے بتلایا کہ وہ رمضان میں جو تراوی پر پیسے ملتے ہیں اس پیسے سے وہ موبائل خرید کے لاتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کتنا لمبا ہوا، ان کی تعلیم کا نقصان، اخلاق کا نقصان، اور اس کی وجہ سے مدرسے کے اندر بدنامی، اور یہاں قرآن کے اوپر انہوں نے کھل کر کے اس طرح پیسے، کتنے بڑے نقصان اندازہ لگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو اور خوب تلاوت کا معمول بناؤ، پورا سال رمضان ہو کہ رمضان نہ ہو اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد ہو گیا، مکتبے عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہماری چھٹی نہیں ہوا کرے، رمضان کے بعد کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھو، دوڑ کا سلسلہ جاری رکھو، نوافل میں یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھو، اور رمضان میں آدھی رات کے بعد خصوصیت سے یاد کرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ قرآن کو منظور کر دیں گے۔ اور طہارت اور نماز کے مسائل کا اہتمام، اور رمضان کی راتوں کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، تفریحات، گناہ، معصیت، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور جو ہو چکا اس پر توبہ، باقاعدہ توبہ کر کے دوڑ شروع کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دوڑ کے اندر مضبوطی عطا فرمائیں گے، اور اس کی قرآن والی نعمت کی قدر کر لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلانے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کے اوپر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو گی ان باتوں پر عمل؟ کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر ہم اس طرح گھومنے پھرنے اور موبائل اور میوزک گانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ دیکھو لوگ جو ہے نا باقاعدہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب ہے کہ جو ابھی مصلی پر ہے اور ابھی بریج پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ باقاعدہ نظر رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظر کو جانتے ہیں کیوں؟ کہ ابھی تو مصلی پر تھے اور ابھی یہ جھانپے پر آ گئے ہیں۔ باقاعدہ لوگ جو ہے مارک کرتے ہیں، اس سے آپ کا وقار نہیں قرآن کا وقار کم ہوگا لوگوں کی نظروں سے، قرآن کی عظمت کم ہوگی۔ اسی لیے ہر ایسی حرکت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ بھی طے کر کے اٹھو کہ رمضان کی راتوں میں انشاءاللہ پورے اہتمام کے ساتھ ہو جایا کرے، مسجدوں میں آباد کرے، مسجدوں میں آ جائے، مسجد میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے آپ کو بچا کے رکھیں گے، دو دو تین تین کی جماعتیں بنا لو، اللہ تعالیٰ گیپ سے انشاءاللہ انتظام کر لیں گے چائے کا بھی، ناشتے کا بھی، ضروریات کا بھی اور اطمینان سے یاد کرنے میں لگے رہو مسجد میں تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن بھی انشاءاللہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا.
جس جس علاقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہر جس جس محلے کی بڑی مسجد میں کون کون کی مسجد ہوا کرے گا
بھائی. دیکھیے اب میں تشکیل کرتا ہوں, مختلف علاقوں سے یہاں حفاظ اور علماء کرام تشریف لائے تو اپنے اپنے علاقے کی مسجد کے اعتبار سے ترتیب بتلاؤ کہ کون اپنی مسجدوں کو رمضان میں آباد رکھے گا, یعنی اس کی ترتیب یہ بنائیں کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد تراویح وغیرہ سے لوگ فارغ ہو جائے, اس کی تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں آنے کا سلسلہ شروع ہو, مسجد کے ذمہ داروں سے درخواست کر کے لائٹ پنکھے ایئر کنڈیشن مشین گرمی کا جو ہے رمضان ہے اس کو بھی شروع کروا دے, کچھ اللہ کے بندے تیار ہو جائے جو مسجد کے لائٹ بل میں تھوڑا تعاون کر دے, اور پھر ایک دو بڑوں کی نگرانی میں, بڑوں کی نگرانی میں دو دو تین تین کی جماعت بن کے نوافل میں ہو, کچھ لوگ دوڑ یاد کر رہے ہو اور جو ہے پوری رات مسجد میں قرآن کا ماحول ہو. کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کو انشاءاللہ اس طرح آباد کریں گے, ایک ایک علماء اس کے ذمہ دار رکھتا ہے, نام لکھوائے
مسجد انوار مہنگ
ان شاء اللہ. دیکھو
پوری
مولانا عبد المنان کا فرمائے کہ پورا رمضان مسجد انوار کے اندر یہی طرح کے ماحول کی یہ ذمہ داری رہتے ہیں. دوسرے علاقے والے دیکھیے مولانا سلیم صاحب, مولانا سلیم صاحب بڑی مسجد میں, یہ سلاور پورا بڑی مسجد میں انشاءاللہ اس کا ماحول بنائیں گے.